खुशबू मैं देख रहा हूं आप में से कोई नए आए हैं, मतलब पहली बार आपको देख रहा हूं। देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि इससे पता चलता है कि भक्ति का प्रचार बढ़ रहा है। भक्ति हमारे शास्त्र के विचार से भक्ति ही मनुष्य जीवन का असल उद्देश्य है। यहां लोग जब तक भौतिक विचार के द्वारा प्रभावित रहते हैं तब तक वो सोचते हैं यहां पर मजा लूटना ही जीवन को उद्देश्य। खाओ पियो एक दार्शनिक विचार भी है जिस विचार के द्वारा आज सारे भौतिक जगत प्रभावित हैं। उस विचार के अनुसार उस दर्शन को बोलते हैं चार वाक इसका संधि होकर होता है चार। चारु का मतलब है सुंदर और वाक का मतलब है वाणी, सुंदर वाणी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और उस दर्शन का विचार क्या है? उस दर्शन का विचार है जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा कृतं जीवेत। जावत जीवेत जब तक जीव जिंदा हो सुखम जीवेत मजा लूटते रहो। यानी अगर पैसा नहीं है तो ऋण कृत्वा, ऋण मतलब उधार लेके घी पियो, उस समय मजा लूटने का विचार था घी पियो। और आजकल का मजा लूटने का विचार क्या है आप सबको पता है क्या पीना है और वो लोग क्या पी गए हैं। लेकिन ये जो विचार है ये ना लायक आदमियों का जिसको जानकारी नहीं, अज्ञान। इस जगत के भौतिक जगत में सब अज्ञान के अंधेरे में गिरे हुए, लेकिन अज्ञान के अंधेरे में रहना ही क्या जीवन का उद्देश्य होना चाहिए? अज्ञान में नहीं रहना चाहिए। इसलिए बचपन से हमको स्कूल में भेजा जाता है, क्यों? ताकि ये अज्ञान दूर हो जाए। लेकिन भौतिक जगत का जो अज्ञान है वो अज्ञान स्कूल कॉलेज से जो शिक्षा मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, उससे उस अंधेरा का, उस अज्ञान का नाश नहीं होता। हम सब अज्ञान के अंधेरे में हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। तिमिर का मतलब क्या है? बहुत गहरा। तिमिर अंधस्य अज्ञान। हम सब अज्ञान की बहुत ही अंधकार में है, लेकिन ज्ञानांजन शला। अंधेरा का कारण क्या रहता है? हमारा आंखें अंध। हम सब अंधा। तो उस आंखें का जो अंधेरा है, ब्लाइंडनेस, दैट कैन बी क्योर्ड बाय अ वेरी स्पेशल अंजन। अंजन का मतलब क्या है? काजल। मतलब ऐसी एक दवाई जो आंखों में लगाने से आंखों की अंधेरी दूर हो। ज्ञानांजन शला। ये कौन सी अंजन है? ज्ञान रूपी अंजन है। और ये अंधेरा और ये अंधता क्या है? कौन सी अंधता है? आध्यात्मिक अंधता। इस अंधता का दूर होता है ज्ञान रूप अंजन के द्वारा। और उस ज्ञान कौन देते हैं? तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव की कृपा से ही इस अज्ञान रूप अंधकार का दूर हो संभव, दूर संभव, हटाना संभव, इलाज संभव। यही ही सरल विचार। हम सब अज्ञान के अंधकार में हैं, लेकिन जब हम सदगुरु के संपर्क में आते हैं तो यह अज्ञान अंधकार दूर। जैसे आज मैं कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, नहीं तो यहां आके हम आप सब को क्या बोलेंगे? और जो कुछ बोल रहे हैं उसका प्राप्ति कहां से हुआ है, कैसे हुआ है? उसका प्राप्ति जो है सदगुरु की कृपा, और वो सदगुरु है शिव। मैं वैसे जब हम अंधेरे में रहते हैं, अंधा रहते हैं, क्योंकि हमारे आंखें सही है, देख रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि ये अंधकार है, अंधेरा, अंधापन। हम सोचते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूं, कुछ जानने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो अंधता है, ये आंखों के अंधेरे, अंधकार, अंधता, ये शब्द आता है अंधता, आंखों की नहीं, ये है चेतना को या आत्मा को। इसलिए इस ज्ञान प्राप्ति को दूसरी जन्म कहा जाता है। जब जैसे पहला जन्म हमको कैसे हुआ? पिता माता की मां, लेकिन वो जन्म हुआ है ये शरीर का। लेकिन जब हम सदगुरु के सामने आते हैं, सदगुरु के साथ साक्षात होता है, मुलाकात होती है, तब हमें पता चलता है कि ये हमारा असल स्वरूप में हम हैं आत्मा, और आत्मा का जन्म होता है सद्गुरु के माध्यम और शास्त्र के माध्यम। सद्गुरु क्या करते हैं? शास्त्र में जो वचन वाणी है वो समझाते हैं। सद्गुरु कुछ अपना बनावट कुछ नहीं बोलते। सद्गुरु का लक्षण ये है कि वो शास्त्र के माध्यम शास्त्र के वाणी के सुनाते हैं। कैसे हो तुम? ठीक है, लेकिन लगता तो है कि ठीक नहीं है, लेकिन आ गए। हरे कृष्ण। ये है सद्गुरु के लक्षण। भौतिक जगत में सब अपने ये मन की बनाया हुआ और बुद्धि से बनाया हुआ बातें करते हैं, बल्कि सद्गुरु ऐसे मौन मन की कल्पना के द्वारा कुछ नहीं करते। वो शास्त्र का वाणी का ही रिपीट करते, शास्त्र का वाणी ही प्रदान करते। इस सिलसिले में सद्गुरु के लक्षण वर्णन करते हुए श्री प्रभुपाद बताए हैं कि सद्गुरु है एक पियोन जैसा। पियोन पोस्टर में पियोन वो चिट्ठी पहुंच देता है, और मनी ऑर्डर भी भेजते हैं। होता है मनी ऑर्डर आया है, किसी ने भेजा है लाख रुपए का, ये रुपए उनका नहीं है, लेकिन जो रिसीवर है उसको उनके पास पहुंच देते हैं। तो वैसे ही गुरु अपने परंपरा की धारा में भगवान का जो वाणी है वो और लोगों को पास दे देते हैं। आप लोग देखेंगे इस्कॉन में जो जब कोई भक्त या हम लोग जब कुछ कहते हैं वो सारे या तो भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम के आधार पर हम बोलते हैं। हम बोलते हैं हम शरीर नहीं है, आत्मा है, हम सब आत्मा है। तो कहने का मतलब कैसे क्या है? भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं देहि नोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं जरा तथा देहांतर प्राप्ति। शरीर का परिवर्तन होता है। कौमार बचपन अवस्था, यौवन युवावस्था, परिवर्तन होता है। एक बच्चा धीरे धीरे जवान बन जाता है और तत्पश्चात धीरे धीरे बुढ़ा बन जाता है, जरा। ऐसे ही तथा देहांतर प्राप्ति और परिवर्तन होते 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 एक समय ये सारे शरीर छोड़कर चले जाते। ये है असल वाणी, शरीर छोड़कर चले जाते। तो सवाल पैदा होता है कौन जाता है? शरीर छोड़कर कौन जाता है? जिसके रहने से, शरीर में रहने से जो जिसको शरीर में जीवन अंश। शरीर तब तक ही जिंदा था जब तक वो शरीर में था। तो पता चलता है कि ये शरीर के परे और कोई नहीं, ये शरीर ही हमारा स्वरूप है। इस विचार को कोई इनकार कर सकते हैं? और इस सिलसिले में एक बात भी आ जाता है कि भगवत गीता का वाणी कोई हिंदू धर्म का या और कोई धर्म का वाणी नहीं, ये है शाश्वत वाणी, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। शब्द सबके, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ख्रिस्टियन यहूदी हो, ईसाई हो, या नहीं जानवर हो, चिड़िया हो, कीड़े हो, पेड़ हो, पौधे हो, सबके लिए है ना। एक पेड़ को देखिए, देही नश्विन जथा देही कौमार, बीज से एक छोटा सा पौधा निकला है। कौमारम जौवनम, धीरे धीरे एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया जौवन, और धीरे धीरे वो भी बुढ़ा हो गया, और तत्पश्चात देहांतर प्राप्ति, मर गया। मर गए, मर जाने का मतलब क्या है? हम बोलते हैं चले गए, चले गए, पास्ट है अंग्रेजी में, बोलते पास्ट, पास्ट मतलब चले गए, देहांत हुआ। हम कहना कहते हैं ना हिंदी में भी, यह देहांत, देह का, शरीर का अंत हुआ, शरीर का अंत हुआ है। लेकिन शरीर का जो शरीरी है, शरीरी, शरीर के मालिक जो है वो चले गए, तो शरीर के मालिक कौन है? तो अब ये प्रश्न आता है, तो मैं कौन हूं? इसका भी सुंदर वर्णन भगवद गीता में मिलता है। भगवत का जीर्णानि वाशांसी यथा विहायो नवानी गृहती नरो वदामी तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्नानि संजाति नवानि। बस दो लाइन में भगवान सारे कुछ बता दिया। एक कितना सुंदर दृष्टांत, जीर्णानि वाशांसि, वाश का मतलब है कपड़ा, वसन, वसन ये शब्द भी आता है वस्त्र। जीर्णानि वाशांसि, जीर्णानि का मतलब क्या है? पुराना है ना। ड्रेस जब पुराना हो जाता है जथा विहाय, तो हम क्या करते हैं? विहाय, विहाय का मतलब होता है त्याग कर, पुराना कपड़ा त्याग कर। जीर्णानि वाशांसि जथा, जथा का मतलब है जैसे, जैसे कपड़ा जब पुराना हो जाता है तो उस कपड़ा उतार कर नवानि गृह्णाति नरो वदामि, लोग एक नया कपड़ा पहनते, नवानि नया कपड़ा पहनते। तथा वैसे ही, जैसे पुराना कपड़ा छोड़कर लोग नया कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही ये शरीर जब पुराना हो जाता है तो पुराना शरीर छोड़कर आत्मा नया शरीर धारण कर। बस ज्ञान मिल गया। और इसलिए भगवान कह रहे हैं नानु शोचन्ति पंडिता, जो पंडित है, जो ज्ञानी है, वो उसके बारे में इस विषय में सोचते नहीं, शोक नहीं करते। जब किसी को मृत्यु होता है तो कष्ट होता है, शोक होता है, कष्ट होता है। लेकिन जब ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है तब हमको मृत्यु के कारण शोक नहीं करते, क्योंकि हमको पता चलता है वो तो चले गए, शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन वो इस सिलसिले में भी एक सुंदर दृष्टांत है। एक राजा था उशीनर देश का, तो युद्ध युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करते हुए उनका मृत्यु हो गया, उनका शरीर लाया गया प्राशन। उनका बहुत सारे रानियां थी, वो सब रोने लगी, तो जमदूत ने आया, वो सब इतने स्नेह के द्वारा उनको अलग मतलब प्रोटेक्ट कर रहे थे, जमदूत ने कुछ नहीं कर पाया, ले आत्मा को नहीं ले जा सका। तो तब जमराज के पास जाकर बताया हाल इतनी खराब है, हमको राम ले नहीं पाए। तो जमराज खुद एक बच्चे के रूप में आया, आकर पूछा रानियों को, अपन रो क्यों रहे हैं? बोला कि हमारा पति का महाराज का देहांत हो गया, वो चले गए। जमराज बच्चे के रूप में हंसने लगे, अरे ये तो सामने तो खड़े हुए हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि चले गए? तो रानी ने बोला, नहीं नहीं, असल जो व्यक्ति था राजा वो चले गए। तब जमराज ने प्रश्न किया, वो अच्छा तो जो चला गया उसको आप कभी देखे हैं? उसके साथ कभी मुलाकात हुआ था? उसको पहचानते थे आप? तब रानिया को होश में आ गए, अरे ये तो सही बात है, जो चला गया उसको तो हमको उनके बारे में तो कुछ भी जानकारी नहीं, उनको तो हम पहचाना नहीं, ये शरीर के माध्यम ही उनके साथ मुलाकात हो रहा है। तो इस ऐसे हम देख सकते हैं कि ये शरीर और आत्मा में अंतर क्या है, और शास्त्र के माध्यम हमें पूर्ण रूप से पता चल रहा है ये शरीर और आत्मा में अंतर क्या है। तो आप सोचिए कि इस ज्ञान हमें मिलना संभव होता है अगर हम सदगुरु के सान्निध्य में नहीं आते। मैं तो बोलूंगा मेरे लिए कभी संभव नहीं होता, मैं तो सोचता था यह शरीर मैं हूं और ये शरीर जब तक है तब तक हाँ खाओ पियो जियो लेकिन आज हमें सही रूप से पता चला है, कम से कम जानकारी तो हुआ ना, अब इसका अनुशीलन की माध्यम हमको उपलब्ध ही होता रहेगा। वैसे चूंकि हमारे चेतना ये शरीर की माध्यम बह रही है तो इसलिए हम सोचते हैं शरीर भी मैं हूं, क्योंकि चेतना ही हमारा हमारा स्थिति का विचार है, मैं हूं क्योंकि मेरा मैं चेतन है, मेरा चेतना है। जब तक चेतना नहीं रहता है, रात को जब हम सो जाते हैं तब क्या मैं हूं ये विचार रहता है? लेकिन जब हम जाग उठते नहीं तो जब हम सपना भी देखते हैं तब भी हमको
चेतना के द्वारा हम सब ये होते उपलब्ध होता मैं हूं। ये भी और एक विचार जागृत अवस्था जी, ये स्थिति जो है हमारा अब जो है जागृत हम सब जागृत है, जागृत वी आर ऑल अवेक, क्योंकि अब ये शरीर के द्वारा हमारा चेतना बह रही है, ये भौतिक स्थूल शरीर जब सो जाते हैं और सपना देखते हैं जब हम सपना देखते हैं तो वो और एक शरीर में हो, ये स्थूल शरीर में चेतना नहीं है लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर में चेतना है। तो मतलब हमारा दो भौतिक शरीर है, एक स्थूल शरीर एक सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर बना है पंचभूत से, मिट्टी पानी अग्नि वायु और आकाश, और स्थूल शरीर ये स्थूल शरीर के परे जो सूक्ष्म शरीर है वो बना है मन बुद्धि और अहंकार से। तो जब मृत्यु होता है ये स्थूल शरीर छोड़कर हम चल जाते हैं लेकिन सूक्ष्म शरीर रह जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार से बना है, वो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के माध्यम आत्मा रह जाती है जिसको प्रेत शरीर कहा। प्रेत वो शरीर तब उस तत्पश्चात और एक शरीर में शरीर प्राप्त होता है माता पिता के माध्यम। ये है जन्म मृत्यु का आवर्तन। तो देखिए इतने सारे ये ज्ञान जो है ये सारे ज्ञान हमको कहां से मिला है, सदगुरु के माध्यम। और सदगुरु कौन है, जो एक और एक सदगुरु के से ये ज्ञान प्राप्त हो, और उन सदगुरु का परिचय क्या है, वो भी और कोई सदगुरु से इस ज्ञान है। तो वैसे गुरु शिष्य के माध्यम इस ज्ञान बहती है, प्रवाह इस ज्ञान के प्रवाह ऐसे गुरु शिष्य के माध्यम होता है। आज जो शिष्य है कल वो गुरु बने, गुरु बनकर अपना शिष्य को, शिष्य का मतलब है स्टूडेंट, गुरु का मतलब है टीचर, टीचर स्टूडेंट। ज्ञान का आदान प्रदान कैसे होता है, टीचर स्टूडेंट, टीचर ग्रहण देते हैं स्टूडेंट ग्रहण करते हैं, ये प्राप्त होने के पश्चात स्टूडेंट टीचर बन के और स्टूडेंट को इस ज्ञान प्रदान करते हैं। ये है परंपरा। तो मतलब ये जो संस्थान है इस्कॉन, इस्कॉन का उद्देश्य है ये आध्यात्मिक ज्ञान सबको बांटते रहे। जब हम आते हैं नए नए तो हम स्टूडेंट रहते हैं और तत्पश्चात हम टीचर बनते हैं, टीचर बन के दूसरे को केवल जिंदगी भर स्टूडेंट ही रहना नहीं, टीचर जरूर बनना नहीं चाहिए। ये इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बताए हैं हम अमर आकर गुरु बन, सब गुरु बन जाओ, लेकिन गुरु बनकर मतलब गुरु बनने के लायक, गुरु बनना कैसे है, पहले शिष्य बनकर शिक्षा प्राप्त होकर तब इस ज्ञान को प्रचार कर। श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं बोला केवल पुरुष ही इस ज्ञान को बांटेंगे, बोले सब सबको ही ये निर्देश दिए, सब पुरुष हो या स्त्री हो, मेन विमेन प्रॉपर को बोले। मैं चाहता हूं मेरे सारे शिष्य मेन विमेन दे ऑल बिकम गुरुज। तो ये गुरु बनने का जगह है, इसकॉन एक गुरु बनाने का संस्थान है, यह सबको गुरु बनना है और गुरु बन के इस वाणी को हर जगह प्रचार करते। प्रचार भी कैसे करेंगे, इस सिलसिले में भी प्रभुपाद बोले हैं, जैसे चिड़िया बहुत प्रकार के हैं, एक है स्पैरोज, स्पैरोज को क्या बोलते हैं हिंदी में, छोटा चिड़िया जो है पता चल गया, वो अपने घर के आसपास उड़ते हैं, और उससे बड़ा थोड़ा चिड़िया है जो एक जगह से और एक जगह जाता है, उससे बड़ा कोई चिड़िया है जो एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, और एक भी चिड़िया है जो एक महादेश से और कोई महादेश में चले, और ऐसे भी चिड़िया है जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह में चले जाते। तो वैसे चिड़िया को जैसे अपने क्षमता के अनुसार उड़ने का क्षमता रहता है, वैसे ही अपने क्षमता के अनुसार सबको प्रचार करना चाहिए, गुरु बनना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। और देखिए प्रचार हो रहा है इसलिए आप सब आए हैं, है ना? अगर ना सुनते थे किसी के पास, जिसके पास इस ज्ञान है, तो आप क्या इस ज्ञान को प्राप्त हो सकते थे? तो आपको ये ज्ञान मिला है तो आप कर रहे हैं, मैं जानता हूं आप में से कोई प्रचार कर रहे हैं, तो जब प्रचार कर रहे हैं तो गुरु बन गए, बन के दूसरे को सिखा रहे हैं, और आप लोगों के प्रभाव से ऐसे ये भक्ति का भक्ति बढ़ रहा है, भक्ति का प्रसार हो रहा है, वैसे सबको प्रचार करना चाहिए, प्रचार कर प्रचार की माध्यम इस भक्ति के जो जानकारी है, भक्ति का मतलब है असल में, भक्ति का मतलब है क्या, भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उसको भक्ति का। तो भगवान की जब, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होने के लिए पहले हमको भगवान को पहचानना पड़ेगा, भगवान को ना जानकर हम अगर भगवान को प्यार करने का कोशिश करते हैं तो संभव नहीं हो, वो सेंटिमेंटल अटैचमेंट होगा, हार्दिक जो प्यार है वो नहीं संभव। लेकिन जब जितने जब तक हम जितना भगवान को समझेंगे पहचानेंगे उतना ही उनके प्रति हमारा प्रेम प्रकाशमान होगा। सो ये एक साधारण विचार है, प्रेम सबके लिए है और सबको प्राप्त होना चाहिए, लेकिन असल प्रेम क्या है वो हमको समझना है, और असल प्रेम है भगवान के प्रति। तो आप एक इस प्रेम के जगत में आ गए हैं तो प्यार करते रहे, और प्यार जितना बढ़ते रहेगा दिल में उतना ही आनंद, प्यार जितना मिलता रहेगा दिल में उतना ही, और जब हम भगवान को प्यार करते हैं तब हम देखते हैं भगवान हमें कितना प्यार करते हैं। तो जितना ही उपलब्धि बढ़ता रहेगा उतना ही आनंद प्राप्त होगा। ये है प्रेम और आनंद में आनंद के बीच संपर्क। हम सब आनंद चाहते हैं, लेकिन आनंद प्राप्ति का जो उपाय है वो तो प्रेम। प्रेम की माध्यम ही आनंद का आश्वासन, नहीं तो भौतिक आनंद का जो प्रयास है उससे दिल न तो शांत होता है न तो तृप्त होता है। लोग आम आदमी क्या करते हैं, कुछ ऐसे मजा लूट के आनंद प्राप्ति का कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा होता है? वो सोचते हैं क्या करते हैं, होटल में जाकर गंदा खाना खाते हैं और खाने में शरीर में हानि हो रहा है, शराब पीते हैं। ये जितने सारे आनंद का प्रयास है वो सारे सब बकवास है। बकवास मतलब उसके कोई असल फल नहीं होता। मैं सुना जब शराब पीते हैं तो कुछ समय के लिए बहुत मजा होता है, सोचता है कि मैं शहंशाह हूं, लेकिन सुबह उसका सर में शरीर में दर्द होने लगता है, जिसको हैंगओवर कहा जाता है। लेकिन भगवत भक्ति का अनुसरण में क्या होता है, इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे तब प्रभुपाद उस समय अमेरिका के नौजवान लड़का लड़की वो नशा करते थे, एक नशा का तैयार हुआ था जिसको LSD एक केमिकल सब्सटेंस। वैसे तो नशा जो होता है हीरोइन कोकेन इत्यादि ये सारे अफीम से बनते हैं, ओपियम का एक्सट्रैक्ट, लेकिन ये था केमिकल, इसलिए इसका जो इसका कीमत बहुत कम होता था, बहुत सस्ता मिलता था और वो सब मजा करते थे और बहुत उसका प्रभाव बहुत तेज होता था, जिसको साइकेडेलिक इफेक्ट कहा जाता है। वो देखते थे जैसे शहंशाह बन गया, सोचते हैं हाँ मैं एकदम शहंशाह बन गया, लेकिन जब ये टूट जाता है नशा का इफेक्ट तब उसको बहुत जैसे बहुत ऊंचे कोई मकान से नीचे गिरने से ज्यादा लग रहा है उसको, ऐसा स्थिति को बोलते हैं कम डाउन, गो हाई एंड कम डाउन। तो जब वो प्रभुपाद जी के माध्यम जब कृष्ण भक्ति का संधान मिला, उसको अनुशीलन करने लगा, कीर्तन करने लगा, नाचने लगा, तो उनको जो मजा उस समय मिला उसका कोई ये नहीं था तुलना नहीं। और उनका उनमें से एक स्लोगन था कि ये नशा ऐसी एक नशा है जिससे कभी नीचे गिरना नहीं पड़ता, स्टे हाई फॉर एवर, हर समय के लिए, बस हर समय के लिए स्टे हाई, मजे में रहो। तो ये है भौतिक जगत के आनंद प्राप्ति के प्रयास और आध्यात्मिक आनंद की उपलब्धि में अंतर। तो इसलिए तो मैं बोलूंगा कि सब आनंद चाहते हैं तो आप सही जगह पर पहुंचेंगे। बस यहां ही रहना, गिरना मत, स्टे हाई। थैंक यू वेरी मच।